أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم چلیے اب کچھ چیزیں ہم وہ دیکھیں گے جو قرآن مجید کے ناتے سے عموما ہم بولتے ہیں لیکن ان کا مطلب یا تو پتہ نہیں ہوتا یا پتہ ہوتا ہے تو اس کی گہرائی میں نہیں اترتے تو ہم شروع کریں گے لفظ قرآن سے کیونکہ ہم اس وقت قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی قوموں کو ایک امت بناتا ہے تو لفظ قرآن جو ہے بنیادی طور پہ قرآ کے لفظ سے نکلا ہے قرآ قاف ابھی روٹس میں بھی نہ جائیے آپ بے شک بالکل بس آسان آسان باتیں کرتے ہیں جیسے پہلی وہی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی تو اسی کے ناطے سے قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب یعنی جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے پھر اس کا ایک لفظی ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جمع کرنا تو قرآن پاک چونکہ مختلف چیزوں سے جمع کیا گیا مختلف چھوٹی چھوٹی وہی اترتی تھیں کبھی چھوٹی صورتوں کی صورت میں کبھی آیات کی صورت میں تو اس کے اندر جمع کرنے کا معنی بھی آتا ہے قرآن پاک کا اصل نام جو ہے وہ قرآن ہے لیکن اس کے مزید اور بھی نام موجود ہیں قرآن پاک ہی کے اندر اس کے مختلف نام آتے ہیں جس میں مثلا ہمارا اپنا ایک اصلی نام ہوتا ہے پھر ایک اس کے بعد ہمارا کوئی لاڈ کا نام ہوتا ہے کوئی پیار کا نام ہوتا ہے تو قرآن پاک کا اصلی نام قرآن ہے قرآن مجید لیکن پھر اس کے مزید دوسرے کچھ نام آتے ہیں مثلا قرآن پاک کو الفرقان کہا گیا اسی طرح قرآن پاک کا نام شفا رحمہ اب ہر لفظ کے پیچھے ایک معنی ہے انشاءاللہ تعالی قرآن کی تفسیر کے دوران یہ سارے نام اپنی پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اور جب آپ کو قرآن پاک سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی مطلب شعوری محبت ہوگی تو آپ پھر اس کے ناموں سے بھی پیار کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو الفرقان نام ہے قرآن پاک کا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سورہ فرقان کی بالکل ابتدائی آیات میں ہے پھر اسی طرح اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت ساری چیزیں جمع کی گئیں اور جامع کتاب ہے دوسری کتابوں سے ممتاز ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ٹھیک ہے تو الکتاب اس کا نام ہے اسی طرح اس کا ایک اور نام ہے الذکر ذکر قرآن پاک میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے سورۃ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے یہ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کا نام ذکر ہے اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ زخرف آیت 43-44 میں بھی آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ تو ذکر بھی نام آ گیا پھر اسی طرح قرآن پاک کا ایک نام نور بھی ہے سورت نساء کی آیت نمبر 174 میں آتا ہے یا ایہا الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہ لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل کیا ہے تو لہذا نور بھی ہے اور برہان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم پھر اسی طرح معجزہ رحمہ اور ہدا اور شفا یہ سارے نام جو ہے سورۃ یونس کی آیت 57 میں آتے ہیں یا ایہا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے تو لہٰذا قرآن پاک کے ये खूबसूरत नाम है और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ हल्का सा इसका खुलासा करते हैं। फिर उसके बाद अगला लफ्ज जो अमूमन हम बोलते हैं वो है सूरत। सूरत का लफ्ज जो है सीन व रा से है, और सूर सूर कहते हैं चार दीवारी को, बाउंड्री वॉल को। आप अगर शहर और सूरत का तकाबुल करें तो आप बहुत अच्छी तरह से सूरत के लफ्ज को समझ सकते हैं। सूरत फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आखिरी लफ्ज है गैरिल मखदूबी अलैहिम वलद्दालीन। हाँ, अब कैसे पता चला कि दुआलीन पर रुकना है और आगे अलिफ लाम मीम जो है ये एक अलग सूरत है? तो ये जो बीच की बाउंड्री होती है ना, ये बताती है कि सूरत ख़त्म हो गई। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान से जान जाते थे, ख़ास तौर पे जहाँ सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती थी तो फिर सहाबा किराम को पता चल जाता था कि यहाँ से नई सूरत है। तो बिल्कुल जैसे फसील होती है किसी शहर की, और सूर किले की दीवार को भी कहते हैं, वॉल ऑफ द फोर्ट्रेस या सिटाडेल की जो दीवार होती है। पहले दौर में शहरों की दीवारें होती थी, जैसे लाहौर का भाटी गेट या कोई और दरवाज़ा आपने सुना होगा, तो वहाँ उसको तसव्वुर में लाएं कि ये सूरतें जो है ना असल में मानी का और अल्लाह की मार्फत के शहर हैं। हर शहर का एक डाउनटाउन होता है। ये चीज़ जो मैं बताने लगी हूँ ये थोड़ी सी आपको नहीं लगेगी, इसलिए पूरी ना भी समझ सकें तो बेसिक चीज़ नोट कर लें। हर शहर को आप सामने लाएं, कोई भी सिटी होता है तो उसका एक मेन डाउनटाउन होता है ना, जिसको सेंट्रम कहते हैं या सेंटर ऑफ द सिटी कहते हैं। इसी तरह हर सूरत का भी एक मरकजी मजमून होता है, हर सूरत का एक थीम है। इंशाल्लाह ताला जब आप तफसीर का सेशन अटेंड करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जब भी कोई नई सूरत शुरू होती है तो उससे पहले अच्छा खासा उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें बताया जाता है कि इस सूरत का मेन थीम क्या है। इस पे बहुत काम किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ शहर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इसी तरह कुछ सूरतें छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। कुछ सूरतों का मरकजी मजमून यानी डाउनटाउन बहुत आसान है, खुली खुली रोड्स है, हाँ, बस जैसे सूरत तब्बत है, सेम पता चल रहा है नाम से ही मजमून से कि इसमें अल्लाह के नबी के दुश्मन की बात की गई। सूरत इखलास, साफ पता चलता है कि इसका टॉपिक इखलास है। छोटी सूरतों का मरकजी मजमून आसान होता है, जैसे छोटे शहरों के डाउनटाउन भी खुले खुले होते हैं, लेकिन असल मसला होता है बड़ी सूरतों में। तवील सूरतें जो होती है ना, उनका बुनियादी मजमून ढूंढना मुश्किल होता है। इसके लिए असल में बहुत दफ़ा कुरान पढ़ने की ज़रूरत होती है। कई बार आप पढ़ते हैं फिर आपको चीज़ें मिलती हैं, फिर आप मोती चुनते हैं और उनकी माला पिरो के किसी को कहते हैं आओ इसको ले लो। स्टूडेंट्स इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि वो चीज़ जो उनको कई घंटे की अरक़रेज़ी के बाद भी नहीं मिलती, वो कोई एक घंटे दो की क्लास अटेंड करके हासिल कर लेते हैं। तो इस मरकजी मजमून को ढूंढने के लिए कुरान को बार बार पढ़ना पड़ता है, और मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ना पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब एक चीज आप एक एंगल से सुन चुके होते हैं तो दोबारा किसी डिफरेंट एंगल से सुने, आप देखते हैं कि जितना आप डिफरेंट लोगों से सुनते हैं उतना आपका सीना खुलता है। जैसे मिसाल दी मैंने एक जगह पहले भी कहीं एक लेक्चर में, कि जैसे आपने अपने फेस को देखना हो तो आपको एक आईना काफी होता है, लेकिन अगर कोई चुटिया देखना चाहे तो क्या करेगा, दो आईने रखेगा ना, एक पीछे और एक आगे। बिल्कुल इसी तरह बस दफ़ा एक उस्ताद से सीख लिया जाना बहुत कुछ खोल देता है इंसान को, अपने दाग धब्बे बहुत कुछ दिखते हैं, लेकिन कुछ बारीकियां ऐसी हैं जिसके लिए आपको किसी दूसरे एंगल से किसी दूसरे से भी सीखना चाहिए, और इससे फिर सीना भी खुलता है। जब हम एक ही उस्ताद से बार बार सुन रहे होते हैं ना तो बस दफ़ा फिर उसी के ही आशिक हो जाते हैं और उसी के सहर का शिकार हो जाते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं होता, बल्कि फिर सोच भी महदूद होती है और उसी से फिर आखिर आके तासुब आ जाता है। और हमारे मुल्कों में जितना भी मसलक परस्ती और फिरकावारी है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पहले ये पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि आप हमारे मसलक के अलावा किसी और की बात नहीं सुनेंगे और दिस एंड दैट। तो सीने खुलते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला बंदे के ऊपर बहुत सारी खैर के दरवाजे खोल देता है। फिर आप कि उस बात से पता चलता है कि ये बात कोई एक एंगल से नहीं, ये कई एंगल से होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि तवील सूरतें जो होती हैं ना, उनके अंदर से जब आप मरकजी मजमून ढूंढ लेते हैं ना तो फिर उसकी बाकी आयतों की तफसीर बहुत अच्छी होती है। अफसोस के साथ कहूंगी कि कुछ लोग बस एक ही दफा कुरान पढ़ते हैं और आगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये सोच लेते हैं उस वक्त कि बस चूंकि हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल के कोर्स के अंदर कोई बंदा वो बातें नहीं कर सकता जो कोई 10-15 साल में सीखता है। ठीक है, सिखाना चाहिए, लेकिन ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं सारी बातें बता दूंगा। हल्की फुल्की तफसीर आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, औरतों के साथ, कहीं भी, लेकिन अगर मौका मिले तो डीप डाउन जाके सीखना, उससे इंशाल्लाह ताला फिर एक कुरान, पूरे कुरान को आप एक चेन में डाल सकते हैं। फिर आप देखिए कि शहर और सूरत के तकाबुल में एक और चीज आपके साथ ने रखूंगी कि हर शहर का अपना मिजाज होता है ना, जैसे नॉर्वे का मिजाज ठंडा है, हाँ, तो पाकिस्तान इंडिया का मिजाज गर्म है, टेम्परेचर का फर्क होता है ना इलाकों में, इसी तरह हर सूरत का भी एक मिजाज है, एक मौसम है, और इसके अंदर आप उस मिजाज को समझते हैं तो फिर आयतों की तासीर आपके दिल में उतरती हैं। कुछ आयतें बहुत जलाली होती हैं, कुछ आयतें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज्यादा मिठास वाली होती हैं। आप किसी अच्छे कारी की आवाज में सुने तो आपको खुद ही महसूस होता है कि कितनी मिठास है इसमें, और कुछ आयतें पढ़ते हुए वाकई जलाल हो रहा था, जलाल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि ये जो लफ्ज हम कहते हैं ना कि कुरान का तर्जुमा, ट्रांसलेशन, तो जेहन में रख लीजिए कि कुरान का असल ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, सिर्फ ये एक तर्जमानी होती है जो हम अपनी अपनी जुबानों में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम बंदों की जुबान में कैसे मूव होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि सूरतों की बहुत सारी बांट है मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन सबसे मारूफ बांट क्या है, मक्की और मदनी। ठीक है, दावत और तबलीग दो हिस्सों में बटी हुई थी। अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक दौर था हिजरत से पहले, उसमें 3 मजमून पढ़ाए गए, तौहीद, रिसालत और अकीदे आखरत पुख्ता किया गया। इसलिए कुरान पाक में जो मक्की सूरतें हैं वो ज्यादा भी हैं, लंबी सूरतें भी हैं। तकरीबन 2/3 हिस्सा कुरान पाक का मक्का में नाजिल हो चुका था और उन पूरी सूरतों में नमाज ज़कात का हल्का फुल्का इशारा मिलता है, लेकिन कोई फिकही बातें नहीं थी। ओनली 1/3 कुरान मदीना में नाजिल हुआ, उसी में सारी फिक्र है। अगर आप सिर्फ कुरान पाक को मसाइल की किताब समझना चाहते हैं ना, तो वो तो एक छोटे से बुकलेट की शक्ल में बन जाएगा। कुरान पाक की आयतें 6,666 है। लफ्ज आयत जो है ना, आयतुन, निशानी के मानों में आता है, क्योंकि हर आयत अल्लाह की कुदरत और मार्फत की निशानी है। याद रखिए कि आयत सेंटेंस नहीं होती, यानी कोई जुमला नहीं होता। बाज दफा बात पूरी नहीं होती लेकिन आयत पूरी हो जाती है, मसलन अर रहमान, पूरी होगी बात, या मुदहामतान, हाँ, दो सर सब्ज क्या है उसका पता अगली आयत के हिस्से से पता चलता है, वल असर। ठीक है, तो आयत जो होती है ना ये निशानी है। हमारे यहाँ ये जो गोल लिखा जाता है निशान, ये असल में आयतुन की ता थी, ताए मरबूता जो गोल कर दी जाती है। अब आज के दौर में 1,000 आयतें जो हैं वो वादों की हैं। कुरान पाक की 1,000 आयतों में अल्लाह ताला ने वादे किए हैं, कहीं जन्नत के, कहीं दुनिया में मदद के। 1,000 आयतें वईद की हैं, धमकी की, डरावे जिसको आप कह लें। 1,000 आयतों में नहीं है डोंट्स, यानी डूज और डोंट्स जैसे होते हैं ना, तो 1,000 डोंट्स की आयतें और 1,000 डोंट्स की, डूज की और डोंट्स की, अमर और नहीं बोलते हैं इसको उर्दू में। 1,000 आयतों में मिसालें हैं, तमसीलात बहुत सारी मिलेंगी आपको कुरान पाक में। आप कह सकते हैं कि मिसाली तरीका तालीम है कुरान पाक का। फिर आयात कसस, किस्से बयान किए गए पिछले अम्बिया के, उनकी कौमों के, वो भी 1,000 आयतें। फिर 250 आयतें हलाल चीज़ों के बारे में, आयात तहलील बोलते हैं उनको, हिल्लत से। और 250 ही आयतें तहरीम है, हुरमत वाली, कुछ चीज़ों को हराम किया गया। देखिए कितनी थोड़ी हैं, हम इसी हलाल हराम पे उलझ जाते हैं, फिकी बातों में पढ़ के हम पूरा 2/3 कुरान छोड़ देते हैं कि नहीं आपका हमारा मसलक नहीं मिलता। तो मसलक तो है ही एक छोटा सा बुकलेट, कोई कोई भी नहीं कहता कि नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, मरने की बातें, जीने की बातें, सारा दिन इकट्ठा है। लेकिन आज अफसोस की बात है, चंद छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के उम्मत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। बहरहाल, आयाते तस्बीह जिसमें अल्लाह की तस्बीहात हैं, युसब्बिहुलिल्लाही या सब्बहलिल्लाही, ये 100 आयतें हैं। और इसके अलावा फिर 66 जो बचती हैं, 66 ये मुतफर्रिक हैं, मुख्तलिफ टॉपिक हैं उसमें। फिर अगली टर्म जो होती है वो है रुकू की। इंशाल्लाह आप बाद में सुन सकेंगे दोबारा। मैं चाह रही थी कि हमारे पास चंद मिनट रह गए तो हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। कुछ भी ना याद रहे तो गम ना करें, खुश हों कि इतना कुछ सीखने जा रही हूँ। एक समंदर मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला इल्म का और मानी का, और ये किताब कोई छोटी चीज थोड़ी है। तो आज तो सिर्फ चखरे हैं आप, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। रुकू रका आ, रा काफ आइन इसका रूट होता है। कुरान पाक का इतना हिस्सा जो एक रकत में पढ़ते थे सहाबा कराम, उसको रुकू कहा जाता है। फिर यह नोट कीजिएगा कि रुकू जो है ना, ये पैराग्राफ नहीं होता, बस इतना हिस्सा जो एक रकत में अमूमन पढ़ा जाता है। ये हिस्सा जो था ना, ये अल्लाह के नबी सल्लम के बाद सॉर्ट आउट हुआ था, उलमा ने मेहनत की उस पे हुआ। कुरान पाक में टोटल 558 रुकू हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। आखिरी सूरतों में तो दो दो तीन तीन आयतों का भी रुकू है जहां सूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। कुछ रुकू ऐसे हैं कि जहां टॉपिक पूरा नहीं भी होता, ठीक है। फिर उसके बाद कुराने पाक के अंदर जो चीज आती है वो क्या है, आराब होते हैं, जैसे जबर, जेर, पेश, बहुत सारी हैं। बोल देती हूँ जल्दी से, शायद किसी को फायदा हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होता है, लेकिन ये देख लीजिए कि क्यामत तक एक जबर और एक जेर भी बदलेगी नहीं। इतनी प्यारी किताब आप पढ़ने जा रहे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कसम खा ली कि इसकी जबर जेर नहीं बदलेगी। फिगर्स जो सामने आते हैं वो क्या हैं कि जबर 53243। अब जो भी उर्दू में फिगर बनता है आप बना लें, इतने जबर हैं कुराने पाक में। फिर 8804, 8804 पेश है। 3 9 5 82 जेरे हैं। कंप्यूटर ने ये भी आसानी कर दी कि जबर जेरे भी गिन सकते हैं आज। मद जो होती है, जो छोटी सी शब्द सी बनी मद जो होती है ना, जो लंबी सी खींचते हैं ऊपर, 1771। फिर शद होती है, एक छोटा सा डब्ल्यू बना होता है लफ्जों पे, शद 1274, 1274। नुक्ते, अब देखिए इस किताब के तो नुक्ते गिने हुए हैं, 1 0 5 6 8 4, कितना लंबा, लाखों में बना होगा शायद, इतने नुक्ते हैं। और सोचिए कि क्यामत तक, यानी जब से बनी है आज तक 1500 साल हो गए, एक नुक्ता नहीं बदला। कोई मुकाबला कर सकता है इस किताब का? फिर 18 मदनी सूरतें और 65 मक्की सूरतें, 31 सूरतों के बारे में इख्तलाफ है कि वो मक्की हैं कि मदनी हैं। इनके नाम आपको किसी भी कुराने पाक के साथ इंशाल्लाह लिखे हुए मिल सकते हैं। कुल कलमे कितने हैं? कलमा किसको कहते हैं भला? लफ्ज, हाँ, हर अल्फाबेटिक्स होते हैं, अलिफ बाता, और कलिमात जो होते हैं वो अल्फाज का मजमू है। 86430, 86430 कलिमात हैं, और हरूफ 323760, 3,23,760। अल्लाह अकबर। फिर कुरान पाक की कुछ आयतों पे सजदा भी है। 14 मुकामात पे तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन एक इख्तलाफी मुकाम है। तो इस तरह 15 आयतें ऐसी हैं कि जिस पे सजदा करने का बहुत अजर है। वो जब आएगी तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। 7 मंजिलों में बांटा गया। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इस समंदर को अबूर करने की तौफीक अता दे। तौफीक दे हमें। यहाँ एक स्टूडेंट थी तो एक मौके पर उन्होंने शेयर किया कि कुरान पाक पढ़ने से पहले मुझे ऐसे लगता था कि ये एक समंदर है जिसका पानी को मुझे पीने को कह रहा है, इम्पॉसिबल लगता है। ये शुरू शुरू के दिनों की बातें थी। फिर क्या हुआ कि हम लोग ट्रिप पे गए, शायद मेरे हले 5 या 6 पारे कर लिए हुए थे तब, तो सारी क्लास को हम साथ लेकर तो ओशन पे ही गए, बोटिंग वगैरह की इन लोगों ने। तो वहाँ जाके उसने फिर शेयर किया कि इत्तफाक से कुरान पाक का कोर्स ज्वाइन करने के बाद आज पहली दफ़ा उस समंदर पे आई हूँ। तो कह रही थी कि आज समंदर जो इतना बड़ा है उसको देख के मैं उससे बातें कर रही हूँ, और मैं उसको कहती हूँ समंदर तुम तो बहुत छोटे हो, अब तो मुझे लगता है मैं तुम्हें भी पी जाऊंगी। यानी सिर्फ 5 पारे पढ़ के इतना सीना खुल चुका कि जो किताब की गहराइयां मैं अंदर ले रही हूँ वो समंदर से बहुत बड़ी हैं। बड़े उसके एक मतलब नेचुरल से एक्सप्रेशंस थे जो वाकई बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। तो दुआ क्या करनी है कि अल्लाह महरूम न रखना, ये खजाना है, यकीन करें इतना बड़ा खजाना है, किसी भी पहाड़ की तह में से हीरे मोती जवाहरात निकलें, माइंस निकलें, पत्थर कीमती निकलें, ये वो खजाना है जो हमारे घरों में पड़ा हुआ है कई कई नुस्खों में, खूबसूरत जुस्तानों में सजा हुआ, लिपटा लिपटाया, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। तो अपने लिए दुआ मांगें, साथियों के लिए भी मांगें कि अल्लाह हमें महरूम लोगों में ना करना। हमें अगर आज मुश्किल भी लग रहा है तो आप आसान कर दीजिए, अगर आज दिल में डाउट आ रहा है तो फिर अल्लाह ताला आप निकाल दें दिल से, बस मुझे नहीं छोड़ना, इसको हर कीमत पे ले लें। जॉब छूटती है तो छूटे, मिल जाएगी फिर वापस, कुछ भी नहीं, ये लेकर जो आपको मिलने वाला है आज आपको इसका नहीं पता, यकीन करें। जब मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस में, यानी यहाँ ऑन साइट जब क्लासेस होती हैं तो समटाइम रिसेप्शन पे लोग बैठे अपने फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कभी कुछ कभी कोई इंटरव्यू के लिए आता है, तो मैं सोचती हूँ कि इनको नहीं पता कि इस वक्त ये किस कागज पे साइन कर रही हैं। जिंदगी में कई मुकाम आते हैं ना, कहीं ना कहीं सिग्नेचर्स होते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं, एक घर ही ले लें तो कितने पेपर फिल कराते हैं वो। हाँ, तो जब कोई कुरान की क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है ना, तो मैं चुपके से मुस्कुराती हूँ और मैं कहती हूँ इनको नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है, इनका तो दिल अंदर से चिड़िया की तरह कांप रहा होगा ना, करूँ कि ना करूँ कमिटमेंट, करूँ ना करूँ, लेकिन इनको नहीं पता कि अल्लाह ने इसके बाद इनके लिए क्या रखा हुआ है। तो मैं आप सब के लिए दिल की गहराइयों से ये दुआ करूँगी कि जो जम गए हैं अल्लाह उनको जमाए रखे, जिनके दिल अभी शक शुबे में हैं, शक ये नहीं होता कि गलत चीज़ है, शक ये होता है कर सकूंगे नहीं, शैतान कमिटमेंट से डराता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह तो अपनी पनाह में ले ले, मुझे शैतान के हवाले ना करना, मुझे नफ्स के हवाले ना करना, मुझे दुनिया के मसाइब के हवाले ना करना, दुनिया की खुशियों के हवाले ना करना, मुझे मेरी जॉब के हवाले ना करना, रुपये पैसे के हवाले ना करना, मेरे बच्चे मेरी वजह ना बन जाए इस किताब से पीछे रहने की, मेरा शौहर मेरे घर वाले इसकी वजह ना बन जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे मौत आनी है तो कोई मुझे एक रात भी मेरे उस घर में नहीं रहने देगा। जिसको चमकाते सजाते संवारते मैं अपने आप को थकाती रहती हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके रास्ते को आसान करे। मुबारक बात है वो लोग जो ऐसी दावत को कबूल करते हैं। आज जो बातें आप सुन रहे हैं, कुछ दिन गुजरेंगे तो आप दूसरों को सुनाने वाले बनेंगे। आज से ये गोल रखें, एक न्यू मुस्लिम औरत के अल्फाज ज़हन में आ गए कि जब मुसलमान हुई फिर किताब पढ़ी समझा उसको, तो कहती थी मेरा दिल चाहता है कि मैं शहर की सबसे ऊंची इमारत पे जाके ऊंची आवाज से ये बात कहूं, पुकार लगाऊं कि लोगों ये किताब बड़ी प्यारी है। तो मुझे भी ऐसी लगता है, हर लम्हे यही दिल चाहता है, हिम्मत हो ना हो خواہش بڑھی ہے اس کتاب کو عام کرتے رہیں، اس کی دہائی دیتے رہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.